रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर सब कुछ शांत था। बगीचे में लगे पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में सरसराहट कर रही थी। ऊपर हवेली के बड़े कमरे में विश्वनाथ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। वो छत को घूर रहा था, नींद जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने करवट बदली, फिर दूसरी करवट, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं था। कुछ देर बाद उसने झुंझलाकर आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल फिर खोल दी। उफ, वो धीरे से बुदबुदाया, फिर अचानक उठकर बैठ गया। उसने अपने बालों में हाथ फेरा, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में जैसे पुराने ख्यालों का शोर गूंज रहा था। माँ की बातें, शादी, धोखा, सब कुछ। वो कुछ सेकंड तक यूं ही बैठा रहा, फिर उसने बेड के पास वाली टेबल की दराज खोली। उसके अंदर से उसने एक सिगरेट का पैकेट निकाला, लाइटर भी साथ में था। उसने सिगरेट निकाली, होंठों के बीच दबाई और लाइटर जलाया। एक पल के लिए कमरे में छोटी सी लौ चमकी, अगले ही पल सिगरेट जल चुकी थी। विश्वनाथ ने लंबा कश लिया, धुआं धीरे धीरे उसके होंठों से बाहर निकला और कमरे की हवा में घुल गया। वो कुछ देर तक चुपचाप सिगरेट पीता रहा। उसकी आंखें कहीं खोई हुई थीं, जैसे वो कमरे में नहीं बल्कि अपने अतीत में कहीं भटक रहा हो। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे बेडसाइड टेबल पर पड़ी। वहां एक फोटो फ्रेम रखा था, लेकिन वो उल्टा रखा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका चेहरा देखने से बचने के लिए उसे पलट दिया हो। विश्वनाथ की आंखें उस पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी उभरी। कुछ सेकंड तक वो उसे बस देखता रहा, फिर उसने सिगरेट का एक और लंबा कश लिया। धुआं हवा में छोड़ते हुए उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से फोटो फ्रेम उठा लिया। उसके हाथ थोड़े रुक गए, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने फोटो फ्रेम को सीधा कर दिया। चांद की हल्की रोशनी अब सीधे उस फोटो पर पड़ रही थी, और फोटो में शामली थी, एक पुरानी तस्वीर। उसमें शामली बहुत अच्छी लग रही थी, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, आंखों में वही चमक और बाल हवा में हल्के हल्के उड़ते हुए। तस्वीर में वो खड़ी थी। विश्वनाथ की उंगलियां फोटो फ्रेम के किनारों को हल्के से छू रही थीं। उसकी आंखें उस तस्वीर पर टिक गईं। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ सिगरेट का धुआं और उसकी भारी सांसों की आवाज थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था अब, बस एक गहरी थकान थी और कहीं बहुत अंदर एक पुराना दर्द। उसने धीरे से बुदबुदाया, शामली। उसका नाम जैसे बहुत वक्त बाद उसके होंठों पर आया था। वो कुछ सेकंड तक फोटो को देखता रहा, फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। अजीब लड़की थी तुम भी, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों के सामने जैसे पुराने दिन घूमने लगे, हंसी, लड़ाइयां और वो वक्त जब सब कुछ बहुत आसान लगता था। उसने एक और कश लिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की नमी सी उभर आई। अगर उस दिन, वो कहते कहते रुक गया, जैसे कोई याद उसके गले में अटक गई हो। उसने जल्दी से सिर झटक दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, जो हो गया वो खत्म हो चुका है। उसने सिगरेट एस्ट्रे में दबा दी, लेकिन उसकी नज़र अब भी फोटो से हट नहीं रही थी। कुछ पल बाद उसने फोटो फ्रेम को वापस टेबल पर रख दिया, लेकिन इस बार उसने उसे उल्टा नहीं किया, वो सीधा ही रखा रहा। विश्वनाथ धीरे धीरे वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उसके सामने टेबल पर रखी शामली की तस्वीर चांद की रोशनी में हल्के हल्के चमक रही थी, जैसे अतीत का कोई दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुलने वाला हो। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे हवेली के बड़े खिड़कियों से अंदर फैल रही थी। हवेली का माहौल हमेशा की तरह शांत था। किचन में नौकर चाकर अपने काम में लगे थे और बड़े हॉल में सुबह की पूजा की हल्की सी खुशबू फैल रही थी। ऊपर अपने कमरे में विश्वनाथ की नींद खुल चुकी थी। रात वैसे भी उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। वो बिस्तर से उठा और सीधे बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो नहा धोकर बाहर आया। अब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। सफेद शर्ट, काला कोट और वही रौबदार व्यक्तित्व। आईने के सामने खड़े होकर वो अपनी टाई ठीक कर रहा था। उसका चेहरा फिर वही ठंडा और सख्त हो चुका था, जैसे रात वाली बेचैनी कहीं गायब हो गई हो। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टुक टुक, आइए। दरवाजा खुला। अंदर हवेली का पुराना नौकर रामू खड़ा था। ठाकुर साहब, विश्वनाथ ने आईने में देखते हुए पूछा। क्या है? रामू ने थोड़ा झुककर कहा। मालकिन आपको बुला रही हैं। विश्वनाथ का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने धीरे से गहरी सांस ली। मन ही मन वो बुदबुदाया, अब सुबह सुबह माँ को क्या याद आ गया। उसने कोट पहना, घड़ी हाथ में बांधी और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो रत्ना देवी के कमरे के सामने खड़ा था। उसने हल्का सा दरवाजा खटखटाया। माँ, मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से आवाज आई। हाँ बेटा, आओ। विश्वनाथ कमरे में अंदर चला गया। कमरा हमेशा की तरह सलीके से सजा हुआ था। रत्ना देवी सोफे पर बैठी थी, उनके सामने टेबल पर चाय रखी थी। जैसे ही उन्होंने विश्वनाथ को देखा, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आओ बेटा, इधर बैठो, उन्होंने पास वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। विश्वनाथ धीरे से जाकर बैठ गया।
लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो थोड़ा सतर्क है। मन ही मन वो सोच रहा था, पता नहीं अब माँ क्या नई बात शुरू करेंगी। रत्ना देवी ने उसे कुछ पल ध्यान से देखा, फिर बोली, ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ माँ। अच्छा है। उन्होंने धीरे से चाय का कप उठाया, फिर बोली, मुझे तुमसे एक काम था। विश्वनाथ के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट उभरी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। क्या काम? रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक खास मेहमान आज जयपुर आ रही हैं। विश्वनाथ ने भौहें सिकोड़ ली, तो तुम उसे एयरपोर्ट से लेकर आओ। विश्वनाथ ने तुरंत कहा, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में आज बहुत काम है, आप किसी ड्राइवर को भेज दो। रत्ना देवी ने सिर हिला दिया। नहीं, उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी, उसे लेने तुम ही जाओगे। विश्वनाथ थोड़ा चिढ़ गया, माँ मैं सच में बिजी हूँ, किसी और को भेज दीजिए। लेकिन रत्ना देवी भी आज जैसे जिद पर उतर आई थीं। उन्होंने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं बेटा, वो मेरी बहुत खास मेहमान है और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसे लेने जाओ। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसका मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जानता था कि माँ से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, ठीक है मैं चला जाऊंगा। रत्ना देवी के चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। सच? हाँ माँ, आपने कह दिया है तो चला जाऊंगा। गुड, रत्ना देवी मुस्कुराई। विश्वनाथ कुर्सी से उठ गया, अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम ड्राइवर से ले लूंगा। ठीक है बेटा। विश्वनाथ कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही पलों बाद उसकी कार हवेली के गेट से बाहर निकल गई। कमरे में अब सिर्फ रत्ना देवी रह गई थी। उन्होंने धीरे से भगवान की मूर्ति की तरफ देखा, फिर उनके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से खुद से बोली, चलो ये तो अच्छा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, अब आगे सब आप संभाल लेना। फिर हल्की हंसी के साथ बोली, जब विशु वहां पहुंचेगा और अपनी बचपन की दोस्त को देखेगा तो कितना खुश होगा। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उन्हें बिल्कुल यकीन था कि आज होने वाली मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि शायद बहुत पुराने रिश्तों को फिर से जगाने वाली शुरुआत होगी।